जागने पर अपने को डुबाइए अपने प्रिय में और सोने के पहले अपना दिल मिलाइए अपने पिया दिल भर से। आपका तो मंगल कल्याण होगा लेकिन आपके संपर्क में आने वाले का भी कल्याण होने लगेगा। ये 20 नियम भगवान व्यास के शास्त्र के अनुसार हम लोगों के जीवन में आते जाएं तो सुख स्वप्ना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए। अपने शिवत्व को पहचान, अपने प्रभुत्व को पहचान। कबीर जी कहते हैं, रिद्धि सिद्धि मांगो नहीं, मांगो तुम पे ये है, निस्तिन दर्शन साधका का कबीर मोय दे। और कबीर जी इतने ऊंचे साधु हो गए कि उनका खूब यश होता था फिर भी देहाध्यास नहीं। कबीर जी ने तो ये कह डाला कि कबीरा कबीरा क्या करो, कबीरा
कबीरा क्या करो,
जाओ यमुना तीर,
जाओ यमुना तीर,
एक गोपी के प्रेम में,
एक गोपी के प्रेम में,
बहे कोटि कबीर,
बहे कोटि कबीर।
ये कौन कह सकता है जिसने सनातन सत्य में विश्रांति पाने की यात्रा पूरी कर ली। कबीरा कबीरा क्या करो, जाओ यमुना तीर, एक गोपी के प्रेम में बहे कोटि कबीर। वो जो प्रेम स्वरूप आत्म स्वरूप कृष्ण कहो भगवान कहो उसमें तो करोड़ों कबीर जैसे शरीरधारी पैदा होते और विलय होते। ये तो शरीर का नाम रखा कबीरा कबीरा क्या करो, जाओ यमुना तीर। शरीर नाम का नाम होगा, शरीर को थोड़ा आराम मिलेगा, इससे आपको तो घाटा ही घाटा है। मैं अपना नाम करूंगा दुनिया में लेकिन तू कौन है उसको भी तो खोज बेटे। जन्म के पहले तो ये नाम नहीं था, मेरे पिताजी नगर सेठ थे और मेरे जन्म के पहले कोई सौदागर झूला देने आ गया, भाई हमको दान का नहीं चाहिए। बोले नहीं, हमें आपको प्रेरणा मिली, तुम्हारे घर कोई आने वाला है कोई भगवान का भक्त जो भी, बाद में महाराज जन्म हुआ। इतने गोरे गोरे थे कि भूरो भूरो भूरा भूरा बोलते थे, बड़े स्मार्ट थे। तो अभी तो दाढ़ी वाले बाबा बन गए। लेकिन उमा भारती जी मेरे को बोलते, बापू जी दाढ़ी आपकी बहुत बढ़िया, जयराम जी की। यही कैसे कि मैं पूछूंगा फिर से भी। जिनके हृदय में संतों के प्रति प्रेम होता है उनको तो भाई संतों की दाढ़ी भी बढ़िया लगती है और सत्संग भी बढ़िया लगता है, सब बढ़िया लगता है। जहाँ प्रेम है स्नेह है वहां तो बढ़िया लगेगा ही, जहाँ द्वेष है वहां घटिया लगता है। द्वेष की पहचान है कि दोष दिखे और प्रेम की पहचान है कि गुण दिखे। जयराम जी की। ये आपका बढ़ियापन है बड़प्पन है कि हमारी दाढ़ी बिचारी तुम्हारे से सर्टिफिकेट बिना मांगे सर्टिफिकेट पा रही है। वाह दाढ़ी वाह, थैंक यू। दिल से तो कई लोगों ने कहा होगा लेकिन सामने साफ कई लोगों ने माना होगा दाढ़ी बढ़िया लगती है लेकिन ये वो व्यक्ति है कि पहली मुलाकात में बोले बापू जी आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया। तो क्या करूं, अदल बदल करेंगे हम ले जाएंगे। नारायण देखना कुछ गड़बड़ ना हो जाए। नारायण हरि नारायण। सदैव प्रसन्न रहना ये ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। दुख के अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। ऐसे करते हुए दुख पैरों तले कुचलने की चीज है। मेरा बेटा है, बहू कहना नहीं मानती, नहीं माने तो नहीं माने, इसमें क्या है। अच्छा है, वैराग्य देती है और कहना मानती तो ठीक है, सेवा करती है। तो जो भी परिस्थितियां हैं और जिनसे आप दबे, उनसे विपरीत भावना करके दबाव को उखाड़ कर फेंक दीजिए। वर्षा ऋतु आ रही है, हरड़ को धात्री कहा है। जो प्रतिदिन दो हरड़ रोज रात को फाक लेता है, लंबी आयुष्य और निरोग आयुष्य का धनी होता है। ये अभी पता चला बीमारियों से गुजरने के बाद। 58 साल के हम बूढ़े थे, अब 65 साल के जवान हैं। आ जाओ मैदान में कोई माइक कलाल, नारायण हरि बोलो ना, कंजू से काहे करे। तो व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु का पूजन अर्थात ज्ञान का आदर, ज्ञान का पूजन, मानवता का आदर, मनुष्यत्व की महत्ता के आदर का दिवस। गुरु वाने के अला बांधू, बला बांधू, भूत बांधू, प्रेत बांधू, फुर नाना। गुरु मिला तब जानिए मिटे शोक संताप, राग दोष व्यापे नहीं फिर सतगुरु आपे। आप गुरु तो आपको गुरु बनाने की युक्तियां बनाते, जो लघु में से गुरु बना दे। छोटी छोटी चीजों में, वासनाओं में, आसक्ति में उलझे हुए जीव को बड़े सुख में, बड़ी शांति में, बड़े माधुर्य में पहुंचाने की जो व्यवस्था कर दे, उन्हें गुरु कहते हैं।
बापूजी, यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों एवं भाइयों, सत्संग में मुझे पहली बार आने का मौका मिला है। मैंने बापू को फोटो में देखा, एकाध बार कभी टीवी चैनल चालू किया तो उसमें भी देखा, ऐसा मौका कभी नहीं आया जब आमने सामने बात होती। और वो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने तय किया हुआ था बापू के पास तभी जाऊंगी जब बापू चाहेंगे, क्योंकि जब तक संत नहीं चाहते हैं आप उनके पास पहुंच ही नहीं सकते। आप कोशिश भी करोगे और वहां पहुंच भी जाओगे तो भी मिलना और नहीं मिलना बराबर हो जाएगा। जब वो तय करेंगे कि आपको आप उनसे मिलो, तभी आप उनसे मिल सकते हो। और इसलिए आज का वो दिन था जब मुझे बापू के दर्शन करने का मौका मिला है। और उनसे एक अद्भुत बात हमें और आपको सबको सुनने को मिली है। मैं तो पहली बार चूंकि उनका सत्संग सुन रही हूं, वो है प्रेम की बात। इस सृष्टि का जो मूल तत्व है वो प्रेम है। ये प्रेम नाम का तत्व यदि ना हो तो सृष्टि नष्ट हो जाए। लेकिन संसार में कोई प्रेम करना नहीं जानता, या तो भगवान प्यार करना जानते हैं या संत प्यार करना जानते हैं। जिसको संसारी लोग अपनी भाषा में प्रेम कहते हैं उसमें तो कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा होता है, लेकिन भगवान का और संतों का और गुरु का ऐसा प्रेम होता है जिसको सच में हम प्रेम की परिभाषा में बांध सकते हैं। मैं ये कह सकती हूं कि साधु संतों को देश की सीमा नहीं बांधती। बापू को याद आ जाएगा, एक सिंध नदी बहती है, वो मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर के चरणों से निकलती है, चाइना के बॉर्डर से, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख प्रांत में से गुजरती है और पाकिस्तान चली जाती है। जैसे नदियों की धाराएं देश और जाति की सीमाओं में नहीं बंधती, इसी प्रकार से परमात्मा का प्रेम और संतों का आशीर्वाद भी कभी देश, जाति और किसी संप्रदाय की सीमा में नहीं बनता। लेकिन फिर भी एक देश नाम की चीज होती है, देश की सीमाएं नाम की एक चीज होती है, और अपने प्रेम की व्यापकता को बनाए रखते हुए भी जिस विशिष्ट देश में देह जन्मी हो, मैं कह सकती हूं बापू के सामने, जैसे सिंध नदी का कोई देश नहीं है, वो तीन चार देशों में से बह रही है, संत का भी कोई देश नहीं होता, लेकिन मैं एक बात कह सकती हूं कि संत तो भारत की भूमि पर ही जन्मते हैं, और जो बाहर जन्मते हैं वो भी कभी ना कभी किसी ना किसी बहाने से भारत में आते जरूर हैं, या उनके कोई साथी सहयोगी भारत में आते जरूर हैं। यह विशेषता तो भारत भूमि की है। इतना पाप, झूठ, कपट और पाखंड बढ़ गया है कि कई बार घबराहट होने लग जाती है कि ऐसे में रहेंगे कैसे। फिर अंत में एक बात याद आ जाती है, अभी बापू बोल रहे थे तो मुझे याद आ रही थी कि एक आदमी ने कहा कि शहर बहुत गंदा हो गया है, इसलिए मैं जंगल में जाऊंगा। जंगल में नदी किनारे गया, मछलियां दिखी तो बोला, अरे तो नदी भी गंदी हो गई है। फिर वो पेड़ के नीचे जाके बैठा तो चिड़िया ने उसके ऊपर बीट कर दी, तो कहने लगा, अरे यहां तो पेड़ के नीचे भी गंदगी है। फिर वो अंत में एक साधु की शरण में गया और कह रहा, महाराज साफ जगह कहां मिलेगी। तब साधु ने उसको कहा कि गंदगी तुम्हारे मन में इसलिए हर जगह दिखती है, तुम तय कर लो जहां बैठोगे शुद्ध मन से भगवान को याद करोगे वो जगह भी शुद्ध हो जाएगी। संसार बहुत काल की गणना के अनुसार चूंकि ये कलयुग लग गया है, इसलिए हृदय की निष्कपटता, निस्वार्थ प्रेम, त्याग और तपस्या, इनका क्षरण होने लगा है। लेकिन फिर भी अगर धरती टिकी है, और मैं ये सच बोल रही हूं, बापू की चमचागिरी नहीं कर रही हूं, मैं सच बोल रही हूं कि फिर भी अगर धरती टिकी है तो वो इसलिए टिकी है बापू, क्योंकि आप जैसे संत भारत भूमि पर विचरण करते हैं। और इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं बापू को एक अंग्रेजी का वाक्य बोलूंगी। बहुत पहले बचपन में जब मैं प्रवचन करने गई थी सिंगापुर, क्योंकि मैं यहां पर मैं राजनीति में हूं लेकिन मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मैं तो बापू का बालक हूं, ये बापू को पता है, और बापू का और मेरा संबंध तो जन्म जन्मांतर का है। और इसलिए मैं अभी कोई जो बात बोलूंगी वो एकदम ऐसे ही बोलूंगी जैसे एक बालक बोलता है। बहुत पहले जब मैं प्रवचन करने गई थी सिंगापुर में, बहुत साल हो गए, मेरे ख्याल से 20-22 साल पहले की बात बता रही हूं मैं आपको, तो वहां एक लड़की ने एक छोटा सा वाक्य लिखा था मेरी डायरी में, वो वाक्य मुझे कभी नहीं भूलता, वो अंग्रेजी में है, मैं बोलूंगी फिर उसका हिंदी का अनुवाद भी बताऊं, क्योंकि बापू के कथा में सभी लोग आते हैं, गांव के गरीब लोग भी आते हैं और बड़े बड़े धनाढ्य लक्ष्मी जिनके घर की परिक्रमा करती है ऐसे लोग भी बापू की कथा में आते हैं। बापू की कथा में ही मैंने यह विशेषता देखी कि गरीब और अमीर दोनों को अमृत के घूंट एक जैसे पीने के लिए मिलते हैं, यहां कोई भेदभाव नहीं होता। और ये भी मैं बापू को बताऊं कि ये चीज मैं बहुत दिनों से नोट कर रही थी कि ये बापू के यहां पर ही ये खूबी देखने को मिलती है कि यहां कोई पद प्रतिष्ठा और पैसे के आधार पर यहां कोई भेदभाव नहीं हो सकता, यहां सबको बापू के दर्शन करने को मिलते हैं, सत्संग सुनने को मिलता है, और जो व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं वो कोई भेदभाव नहीं करते व्यवस्था बनाते समय। और इसलिए मैं वो वाक्य बोलूंगी यहां पर, एक छोटी सी लड़की ने मेरी डायरी में लिखा था, फिर मैं उसकी हिंदी बताऊंगी, हिंदी बताऊंगी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी यहां हैं, उसके साथ अपनी बात खत्म करूंगी। उसने लिखा था, मैं बापू को सुना रही हूं, उसने लिखा था मेरी डायरी में, आई लव यू नॉट फॉर व्हाट यू आर बट फॉर व्हाट आई एम व्हेन आई एम विद यू। उसने लिखा था कि मैं आपको इसलिए प्रेम नहीं करती हूं कि आप क्या हो, बल्कि मैं आपको इसलिए प्रेम करती हूं कि मैं क्या हो जाती हूं जब मैं आपके पास होती हूं। गुरु के बारे में यह कभी नहीं देखना चाहिए कि गुरु को क्या आता है क्या नहीं आता, गुरु क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ये था लेने के लिए निकले तो हम ही गुरु हो गए फिर। इसलिए ये कभी नहीं रखना चाहिए गुरु कपड़े कैसे पहनते हैं, गुरु भोजन कैसे करते हैं, गुरु वाणी कैसी बोलते हैं, अरे ये तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं आपको सच बताती हूं, एक ही चीज को देखिए कि जब हम उनके पास बैठे थे तो हम कैसे हो गए थे, और जो हम हो गए थे वही हमारी उपलब्धि है। गुरु की तो थाह ली नहीं जा सकती, इसलिए मैं बापू को भी यही बोलूंगी अंग्रेजी में, फिर हिंदी भी बोलूंगी। मैं बोलूंगी बापू आई लव यू नॉट फॉर व्हाट यू आर बट फॉर व्हाट आई एम व्हेन आई एम विद यू। मैं आपको बहुत प्यार करती हूं, इसके लिए नहीं। मैं आपको बहुत प्यार करती हूं इसके लिए नहीं कि आप क्या हो, बल्कि इसके लिए कि मैं क्या हो गई थी जब मैं आपके पास बैठी थी। और इन्हीं शब्दों के साथ
क्या हो गई थी ये भी बता दो, बड़ा आनंद आ रहा है सब।
मैं आपके पास बैठ करके जो हो गई थी ना, उसके सामने तो मैं इंद्रासन भी ठुकरा दूंगी।
शाबाश है तुम्हारे मात पिता को।
बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं बापू को प्रणाम करती हूँ, आप सबको प्रणाम।